नमते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 74 आराधनम भगवत इहिमाना निराशिष ये तो न चिंति अपि परम ते स्वार्थ कुशलः स्मृतः आराधनं भगवतः इमानः निराशिषः ये तु नैषन्ति अपि परमं ते स्वार्थकुशलः स्मृतः आराधनं भगवतः इहिमानः निराशिषः ये तु नैषन्ति अपि परमा ते स्वार्थकुशलः स्मृतः आराधनम् उपासना भगवतः श्री भगवान की इहिमानः वांछित निराशिषः भौतिक इच्छाओं से रहित निष्काम ये जो तू निसंदेह न इच्छन्ति कामना नहीं करते अपि भी परम मुक्ति ते वे स्व अर्थ अपने हित में कुशलः कुशल दक्ष स्मृतः माने हुए। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ शिल बहुपाद द्वारा। शिल बहुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। यद्यपि श्री भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती तो भी भगवान श्री कृष्ण उनकी समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान से कोई वर नहीं मांगा क्योंकि वे भगवान के दर्शन से ही परम तुष्ट थे। तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने महाराज ध्रुव को ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक ध्रुव लोक भेज दिया क्योंकि प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता से भी बड़े राज्य की कामना की थी। अतः शास्त्र का कथन है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उदार बुद्धि वाला व्यक्ति चाहे सकाम हो निष्काम हो या मुक्ति का इच्छुक हो या उसे सब प्रकार के परम ब्रह्म सब प्रकार से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 10। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण भक्ति में निरत हो, तब भले ही वह निष्काम क्यों ना हो उसकी पूर्व कामनाओं की पूर्ति मात्र भगवान की उपासना से हो जाती है। वास्तविक भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता, अन्याभिलाषिता शून्यम। किंतु भगवान अपने भक्त को अक्षय ऐश्वर्य प्रदान करके उसकी कामना पूरी करते हैं। कर्मी का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है किंतु भक्त का ऐश्वर्य अविनश्वर है। जो जो भक्त अधिक भक्ति करता रहता है त्यों त्यों उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। हरे कृष्ण। यद्यपि श्री भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा यहाँ तक मुक्ति की भी कामना नहीं रहती, तो भी भगवान श्री कृष्ण उनकी समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। तो यहाँ चर्चा आ रही है समस्त कामनाओं की, तो भगवान कौन सी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्या लेवल है, किस प्रकार की कामना जो है उसको जब आप भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान जो है आपकी किस प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है भगवद गीता में, चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी छह भर्तृषभ। इसमें चर्चा आ रही है भ्रतृष्ठ चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। क्या कहलाया इन चारों के लिए, विशेषण क्या दिया, किस प्रकार के लोग हैं ये, पुण्यात्मा कि पुण्य कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि पाप की श्रेणी में नहीं आता, परंतु जब हम चर्चा करते हैं कि चार प्रकार के लोग जो है भगवान की सेवा में जाते हैं, तो उसमें जो आर्त हैं, आर्त का अर्थ क्या है, व्हाट इज आर्त, आर्त है आरती कर रहा है, अर्थात आर्थ का मतलब होता है दुख, वो दुख दूर करने की प्रार्थना कर रहा है, बेसिकली क्या है, वो रो रहा है, इज क्राइम, क्यों, उसके ऊपर संसार में दुख आए हुए हैं और वो जो है चाहता है कि दुखों की वजह से जो उसके ऊपर प्रतिकूलता आ रही है, जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, उनको दूर कर दिया जाए, उनको दूर कर दिया जाए। जैसे कि द्रौपदी ने मांगा, उत्तरा ने चाहा, गजराज ने चाहा, जरासंध के जो बंदी थे उन्होंने चाहा कि हमारे दुख को दूर करिए, आर्थ कैटेगरी के लोग। अब दूसरी आती है इसके अंदर आर्थ के बाद जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब क्या है कि वो भगवान को जानना चाहता है, अर्थात जो भगवत ज्ञान है, जो भगवत विद्या है, अर्थात भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, काल का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, इन सब कुछ जानना चाहता है, ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दिस। वो भगवान को अच्छे तरीके से तत्व से समझना चाहता, उसकी इच्छा क्या है कि मैं भगवान को तत्व से जान पाऊं। और जब जिज्ञासु है तो जिज्ञासु की कैटेगरी में आए परीक्षित महाराज, आए उद्धव जी, आए जिन्होंने जिज्ञासा करी, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी। और तीसरा आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ क्या है, आपने कहा धन मांगना, धन मांगने का अर्थ क्या है कि आई वॉन्ट सिचुएशन टू बी फेवरेबल टू मी, अनुकूलता चाहता हूँ मैं, प्रतिकूलता नहीं चाहता। आज के समाज के अंदर जो है जब हम चलते हैं तो कहते हैं कि धन एक जो है मुख्य द्रव्य है जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, धन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और धन आता है तो आप सोचते हो कि सिचुएशन जो है मेरे फेवरेबल हो गई है, बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है, तो सिचुएशन जो है ठीक है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े कलह एक अलग बात है, दैट इज अ सेपरेट इशू। पर धन आने के बाद फीलिंग क्या आती है कि सिचुएशन जो है मेरे लिए फेवरेबल हो गई। यही इच्छा यहां पे करी ध्रुव महाराज ने कि मेरे को राज्य मिले, सुग्रीव ने कहा कि मेरे को भी राज्य मिले, बाली का वध हो जाए, बाली विभीषण ने भी कहा मुझे राज्य मिले, अर्थात इन सब को जो है धन, अर्थात अर्थार्थी थे, भगवान के भक्त थे परंतु अर्थार्थी थे। अब लास्ट जो कैटेगरी इसमें आई है ज्ञानी की। ज्ञानी का अर्थ क्या है, ज्ञानी यहां पर नॉलेज से नहीं है, माइंड इट, ज्ञानी की परिभाषा फिर जो है भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो मत्यर्थम अहम् च च मम प्रिय। इसमें जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ज्ञानी कौन हुआ? ज्ञानी हुआ जिसने भगवान को तत्व से समझ लिया है, नंबर एक। और नंबर दो, अब वो भगवान से प्रेममय संबंध स्थापित करना चाहता है, भगवान का प्रेमी है, उसे कोई चीज नहीं चाहिए, कोई अभिलाषा नहीं है उसकी। यहां प्रभुपाद जी कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर से, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण शीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति के लक्षण क्या? उत्तम भक्ति के लक्षणों में जब हम आते हैं तो इसको ब्रॉडली जो है आप इस श्लोक को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि भक्ति को स्वरूप से समझना, स्वरूप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली, कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति को स्वरूप से समझने का मतलब है स्वरूप सिद्धा भक्ति, जिसे कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्ति का स्वरूप क्या है? आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, परंतु प्रेममयी सेवा का जो अल्टीमेट है वो क्या है कि आपके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, एक ही अभिलाषा होनी चाहिए। अभिलाषा क्या है? भगवान की सेवा। अभिलाषा का मतलब है साधारण शब्दों में कामना, कि आपके अंदर एक कामना होनी चाहिए। अब कामना को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, बहुत ही मतलब एक मुख्य मुख्य रूप से क्लासिफाई करेंगे, तो कामना भी जो है वो दो प्रकार की आती है, एक लौकिक इस लोक की, दूसरी परलौकिक दूसरे लोक की। जो इस लोक की कामना है उसमें सुख की प्राप्ति, दुख दूर करने की अभिलाषा, अधिक से आदि आत्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों से मुक्ति की, मतलब आप चाहते हैं कि मेरे मन की चिंताएं खत्म हो जाएं, मेरी टेंशन खत्म हो जाएं, मेरे शरीर का रोग खत्म हो जाए, मेरे पे धन आ जाए, मेरे पे सुख भोग हो जाए, इंद्र तृप्ति के सारे साधन उपलब्ध हो जाएं, ये आपकी कामनाएं हैं इस लोक के लिए। दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग। इसके सिवाय कुछ करते हैं क्या? हमसे किसी ने प्रश्न किया, प्रभु जी आप ना यहाँ पर आरती करते हो तो आप वो आरती नहीं करते हो, जय जगदीश हरे, बड़ी कॉमन आरती है, हर व्यक्ति जानता है, प्रत्येक व्यक्ति को आती है, और आपकी आरती तो हमें आती नहीं है, तो आप ऐसी आरती क्यों नहीं करते हो? रीजन भाई ऐसा है, आप उस आरती के अंदर क्या कह रहे हो, जरा शब्दों में गौर करिएगा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लौकिक कामना हो गई नहीं हो गई? इस संसार में इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्र भोगों के लिए आप संपत्ति भी चाहते हो, शरीर का रोग भी दूर करना चाहते हो, आप यह कामना कर रहे हो। पर यहां पे कामना कौन सी है? यह कामना है परमार्थ की, अर्थात परलोक की कामना, अर्थात दिव्य लोक की कामना, अर्थात भगवान के लोक जाने की कामना है, भगवान की सेवा की कामना। उसमें भी दो भेद है, जैसे यहां जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहां तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती। वाई व्यक्ति कहता है भक्ति की कामना है, मुक्ति की कामना नहीं है। रीजन, अब एक बात बताइए, अगर आपको 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े, अर्थात बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के चक्र से आप बाहर निकल जाओ, तो आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? कल्याण होगा ना, सिचुएशन इज वेरी फेवरेबल कि मैं 84 लाख योनियों के चक्र में नहीं भटका। इसका मतलब है आपको अपने कल्याण की कामना हो गई, मुक्ति की कामना करने में आप फिर भी भगवान से कुछ मांग रहे हैं कि भगवान अपने धाम में ले चलिए, जहां जाने के बाद मेरे को इस संसार में लौट कर ना आना पड़े। डिजायर है पर भौतिक कामना नहीं है ये, इट इज टू बी अंडरस्टूड। ये आध्यात्मिक कामना है, ये भौतिक कामना नहीं है, इंद्र तृप्ति की कामना नहीं है, सांसारिक भोगों को भोगने की कामना नहीं है। ये कामना है कि मैं भगवान के धाम में पहुंच जाऊं, अर्थात कहीं ना कहीं भगवान से कुछ लेने की इच्छा है। सब डिजायर है, आध्यात्मिक डिजायर है, पर कहीं ना कहीं कुछ लेने की इच्छा है। दूसरी सिचुएशन है भगवत भक्ति, अर्थात मुझे आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का मतलब है भगवान से प्रेम हो जाए। तो भगवान से प्रेम जो है उसका मतलब क्या है कि भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे भगवान की सेवा में लगना है, मुझे समर्पण करना है। आई हैव टू सरेंडर। जो मेरा समर्पण है उसमें क्या है, मुझे भगवान को देने की इच्छा है। आई वॉन्ट टू गिव, आई वॉन्ट टू सरेंडर माई सेल्फ। एक में फिर भी मुक्ति लेने की इच्छा है, दूसरे में अपने आप को देने की इच्छा है, त्याग है। मैं अपने आप को आपके चरणों में सरेंडर कर रहा हूं, मैं अपने आप को आपकी सेवा में 100% लगा रहा हूं, मेरे अपनी उसमें कोई भी कामना नहीं है। तो यहां पर जो है, जब हम देखते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, कि मेरी भगवान की इच्छा के, भगवान की सेवा की, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की, भगवान के प्रति समर्पण करने के सिवाय और कोई कामना है ही नहीं। तो आगे जो है इसमें कहा गया है कि अगर आप भगवान का प्रेम प्राप्त करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए आपको अपने सुख की उससे गंध मात्र भी इच्छा नहीं है, एक हल्की सी भी इच्छा नहीं है, यू नॉट इंटरेस्टेड कि मेरे को भक्ति करने से कोई सुख प्राप्त हो जाए किसी भी प्रकार का, एक उसके जिसे कहते हैं ना फ्लैश स्फुलिंग, बिल्कुल एक चिंगारी मात्र भी मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। और क्या कहते हैं रूप गोस्वामी कि अगर आप भक्ति करते हुए आप प्राणों पे बन आती है और आप अपने प्राण बचाने की याचना कर लेते हैं तो आप उत्तमा भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। भगवान की सेवा करते हुए अगर जान चली जाती है तो आपको जान दे देनी चाहिए, अगर उसको बचाने की भी कामना नहीं करनी चाहिए। अगर कामना करते हैं तो आपकी भक्ति उत्तम भक्ति नहीं है। वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है सोचना, बहुत कठिन है करना। जन्माष्टमी आती है ना तो वॉलंटियर फॉर्म भरे जाते हैं, प्रभु जी मंदिर में सेवा लगाना। मैंने कहा पार्किंग कौन करेगा, गार्ड एम्प्लॉय कर लो ना। मतलब भगवान की सेवा करने में भी मुझे सुखपूर्ण स्थिति चाहिए, मैं अनफेवरेबल सिचुएशन में रह के भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जूता सेवा तो शीशगंज से मंगा लो ना, वो आ जाते हैं, वो तो सेवा कर देते हैं, तो फलानी जगह से आ जाते हैं सेवा कर देते हैं। हम तो माला जपते हैं ना, जूता कैसे पकड़ेंगे हम, तो हमारा तो हाथ जो है हमारा वो भ्रष्ट हो जाएगा खराब हो जाएगा। मीन्स भगवान की सेवा करने की इच्छा तो है बट एज पर माई चॉइस, जिसमें मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे कष्ट ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, तो कहाँ उत्तम भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आए हम। हम तो अंश मात्र भी, लेश मात्र भी उसके निकट नहीं है, क्योंकि हमने जो है भगवान की भक्ति करते हुए सबसे पहले अपने सुख की कामना करी, मुझे कैसे आराम से भक्ति मिल सके। प्रभु जी ऐसी सेवा देना जिसमें बस भगवान के दर्शन होते रहे सारा दिन बस। आई रिमेम्बर, क्योंकि मैंने बहुत वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया है, 3,000 वॉलंटियर मैंने एक जन्माष्टमी पर रिक्रूट किए हैं, और मेरे पास बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है, पीपल रिक्वेस्ट, पर्सनली सिफारिशें आती हैं। अब पर्सनल रिक्वेस्ट तो अलग बात है, वो सिफारिशें करते कि हमारी सेवा है, प्रभु जी मेरा मेरा ये मेरा आदमी इसकी सेवा ना मंदिर में लगा देना, मंदिर में लगा देना प्लीज। क्यों वो ऐसा है जी, जब दर्शन होते रहेंगे सारा दिन भगवान के आगे। सो उत्तम भक्ति के प्लेटफॉर्म में अर्थात अन्याभिलाषिता शून्यम, आपको समझना पड़ेगा स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या, स्वरूप से भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति का स्वरूप ये है कि आपके मन के अंदर सिर्फ त्याग की अभिलाषा होनी चाहिए कि मैं भगवान के लिए क्या करूं। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं। What does it mean? फर्क क्या हुआ दोनों में? भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं। Sounds same. आम व्यक्ति से बात करेंगे कोई फर्क ही नहीं जी, मैं भगवान मेरे हैं मैं भगवान को, एक ही तो बात है, क्या फर्क है, बट देयर इज अ ग्रॉस डिफरेंस। एक बड़ा तो जहां लेके चलेंगे आप तो एक आपको फर्क दिखाई देगा, क्या फर्क है। आप बाजार गए, शॉपिंग करी, दुकान में बैठे, सब डिस्काउंट दो ना कुछ, आप तो अपने ही हैं, भगवान मेरे हैं, तो भगवान से कुछ ना कुछ कामना, कुछ ना कुछ इच्छा हो गई कि भगवान मेरे लिए कुछ करेंगे, पुण्यात्मा कैटेगरी आ गई, उसको जो है आरती अर्थार्थी जिज्ञासु कुछ ना कुछ है, परंतु मैं भगवान का हूं तो मैं भगवान के लिए क्या करूं, व्हाट शुड बी माय रोल, व्हाट शुड आई डू, भक्ति को कैसे परफॉर्म करूं, भगवान के प्रति कैसे समर्पण करूं, भगवान के प्रति कैसे सरेंडर करूं, वो लक्षण मेरे में कैसे आएंगे कि मैं भगवान की सेवा में अपने आप को 200% लगा सकूं। तो दूसरा इसका पार्ट है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से रहित, ये जो है तटस्था भक्ति है, अर्थात अन्य मनसक, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्ञान, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कर्म। कर्म मीन्स जो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं इसके अनुवाद के अंदर कि किसी प्रकार की भौतिक इच्छा, सकाम कर्म करते हैं तो कामना रहती है मेरे को कुछ प्राप्त हो, निष्काम कर्म करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस, निष्काम कर्म एंड निष्काम कर्म योग, दोनों में फर्क है। निष्काम कर्म का मतलब है कि आपने कोई कामना नहीं करी है परंतु कर्म कर दिया है, उस कर्म के द्वारा आपने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा है। आपने भिखारी को 5 रुपए दे दिए, भूखे को खाना खिला दिया, आपने उससे कोई कामना नहीं करी। भिखारी से आपने नहीं कहा अच्छा देखो मैं तुझे 5 रुपए दे रहा हूं, जब वक्त आएगा ना तो मैं तेरे से सूद समेत ले लूंगा, या तू मेरे लिए ये प्रार्थना कर, तू तो खाली बैठा है, मैं बड़ा बिजी हूं, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम, तो मैं तेरे को जो है 101 रुपया देता हूं, तो मेरे लिए जो है 10 माला का जप कर दे, भगवान से प्रार्थना कर दे कि मेरे घर में सुख संपत्ति आ जाए। अर्थात आपने भिखारी से कामना नहीं करी कोई भी, बिकॉज यू हैव नॉट पेड हिम, डोंट आस्क एनीथिंग फॉर हिम। वो निष्काम कर्म जो है पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो गया और आपको उसका फल भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। बट अगर आप निष्काम कर्म करते हैं, कैसा, जैसा भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बताते हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म करना बता रहा हूं, अर्थात बुद्धि योग, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा तुम्हें मेरे से जोड़ना है, अर्थात यत करोषि यसनासी यज्ञोषि ददासी यत, यत तपस्यासी कौन्ते तद्गुरुश्वा मदर्पणम्, कि तुम्हें अपने सारे कर्म मेरे को अर्पण करने हैं, जो खाते हो, जो पहनते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, उसको मेरे लिए करो। बट उसमें भी भेद है, उसमें भी बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है कि मद अर्थम और मद अर्पणम दोनों में भेद है। मत अर्पणम, मेरे को अर्पण करो, मत अर्थम मेरे लिए करो, तो कौन सी चीज बेटर है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, आज फिर एग्जाम्पल देता हूं। सुनो क्या खाओगे शाम को, बोले आज सफेद चने बना लेना, पुलाव बना लेना, पनीर बना लेना, लेते आना जरा। आया, कुक हुआ, ओहो प्रभु जी ने कहा था भगवान को भोग लगाए खाना है, भगवान को अर्पण कर देते हैं पहले। तो आपने बनाया पति के लिए, बनाया बेटे के लिए, परंतु भगवान को अर्पण कर दिया। सेकंड सिचुएशन, अरे आज भगवान को छोले खिलाने, भाई लेके आना जरा, आज भगवान को पनीर खिलाना, लेके आना, तो बन रहा है किसके लिए, भगवान के लिए। तो कौन सी सिचुएशन बेटर है, फर्स्ट या सेकंड। तो हम जो है जब अपना कर्म करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी भक्ति के अंदर हमारे जो सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, उसके प्रति हमें अन्य मनसक होना पड़ेगा, इनडिफरेंट होना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, केवल अकर्म। भगवान चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है। अरे मैं तो कुछ काम ही ना करूं, फिर सारे काम भगवान के लिए करूं तो अपने लिए क्या करूंगा? फिर बड़ी टेक्निकल सिचुएशन आ गई। सारे काम अगर भगवान के लिए ही करने हैं तो अपने लिए क्या करना है? अपना भी तो कोई वजूद है ना, अपनी भी आइडेंटिटी है ना, अपने लिए भी तो कुछ करना है ना। तो भगवान है दिव्य ज्ञान जब दे रहे हैं तो उसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे सारे कर्म मेरे लिए होने चाहिए, अर्थात कर्म में अकर्म को देखना। ऑल योर एक्शंस, जो भी आप कार्य करते हो, बोला यद करोषि यद सनासि यज्ञ होषि ददासि, जो भी कार्य करते हो मेरे लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं, ओनली फॉर मी। और अकर्म में कर्म देखना। किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं? जी मैं तो अकर्म करता हूं, मैं अकर्म करता हूं, अर्थात केवल भगवान के लिए कार्य करता हूं और यही भगवान के लिए किया हुआ कार्य ही मेरा कर्म है और मेरा कोई कर्म नहीं। मेरे कर्मों की कुशलता यही है, एक्सपर्टाइज ये जो यहां लिखा है, कर्मों की कुशलता, स्वार्थ कुशलता, कर्मों की कुशलता की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे जो कर्म हैं केवल भगवान के लिए हैं और किसी के लिए नहीं। मेरे अकर्म अर्थात भगवान के लिए किए गए कर्म ही मेरे कर्म हैं। दूसरी सिचुएशन में मैं जो भी कर्म करता हूँ केवल भगवान के लिए करता हूँ, अर्थात कर्म ही मेरा अकर्म। अब यहाँ पर जो है भगवान ने कहा इसके अंदर कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती। तो भक्त ये चाहता है कि भगवान मुझे अपनी भक्ति दीजिए, अर्थात मैं किस प्रकार से आपके प्रति शरणागत हो सकूं। आई वॉन्ट टू सरेंडर माई सेल्फ 101%। मैं अपनी, मेरे को सुख की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, आई डोंट वॉन्ट इट। मेरे को भगवान की सेवा यहां भी करनी है, मेरे को भगवान की सेवा धाम में जाके भी करनी है। आई कांट बी इंडिपेंडेंट एंटिटी ओवर देयर। सेवा पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा कभी भी भगवान में लीन नहीं होती, उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बना रहता है। पर वहां पर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होते हुए भी आप भगवान की सेवा में। तो भक्त कहता है जब सेवा करनी है तो यहां क्या बुरा भाई, वहां जाके जो करनी है तो यहां क्या बुरा है? कम से कम यहां सेवा कर रहा हूं तो अपने साथ सेवा में दूसरों को जोड़ रहा हूं, दूसरों के प्रति भी मैं एक कार्य कर रहा हूं कि लोगों को भगवान के धाम जाने का राह। भक्त क्या कहता है? ब्रह्मचारी हैं या बाहर खड़े हैं, तो नया व्यक्ति आया, हरे कृष्णा करी, वेलकम किया, उसको दर्शन कराए, प्रसाद खिलाया, उसको प्रीच किया, डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया, अर्थात उसको जो है भक्ति के मार्ग पे डाल दिया। इट्स अ वेरी बिग जॉब, साधारण काम नहीं। तो यहां पर जो है भक्ति करना वो प्रेफर करता है, वो कहता है कि मेरे को मुक्ति की कामना नहीं है, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं। तो मैं भक्त बनने के लिए आपके लोक में जाऊं, तो मैं यहां अगर आपका भक्त, शुद्ध भक्त बन सकूं और शुद्ध भक्त बन के आज मैं जो है हजारों लोगों को जो है आपके मार्ग में डाल सकूं, तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो यहां पर जो है प्रभुपाद एक श्लोक कोट कर रहे हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। उदार बुद्धि वाला व्यक्ति चाहे सकाम हो, निष्काम हो या मुक्ति का इच्छुक हो। तो उदार बुद्धि क्या, उदार बुद्धि क्या है? व्हाट इज दैट उदार बुद्धि? उदार बुद्धि किसे कहते हैं? इसी कंटिन्यूएशन में चतुर्विधा भजन्ते माम के बाद 18वें श्लोक के अंदर भगवान शब्द इस्तेमाल करते हैं, उदारा सर्व अवैते ज्ञानी त्वात्मवैव में मतम। यहां पे इस्तेमाल हो रही है, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं, उसे मैं अपने ही समान मानता हूं, वे मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और इसी के परपट में एक बहुत ही सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है, भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 68वां श्लोक है। साधु हृदयम मयम धाधु नाम हृदयम त्वहम मद्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मना कपि। कि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल सिचुएशन। कि आपको भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए? कैन यू हैव इट? कि मैंने आपके हृदय को जीत लिया है, मैंने आपके हृदय में प्रेममय स्थान प्राप्त कर लिया है, तो आपने भगवान के हृदय में एक प्रेममय स्थान प्राप्त कर लिया है और भगवान इसकी कमिटमेंट खुद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। रेसिप्रोकेशन, आप भगवान के हृदय में वास कर रहे हैं और भगवान आपके हृदय में वास कर रहे हैं। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों में घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जिसने अपने आप को मेरे प्रति सरेंडर कर दिया, सरेंडर, गोपियां जो हैं ब्रज के अंदर भगवान से जो प्रेम करती हैं, उस प्रेम का स्टेटस क्या है, लेवल क्या है? एक महात्मा जी आए, कहने लगे भाई पानी पिलवा दीजिए आप, मैं भगवान का भक्त हूँ। बोली अच्छा, देखो ना मैं ब्रह्मा जी को जानता हूँ, ना शिव जी को जानता हूँ, ना मैं इनको जानता हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ। उसने 5-7 नाम गिनाए, मैं तो केवल भगवान कृष्ण को जानता हूँ। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, महात्मा जी आपने उनका नाम तो सुना है ना, नाम तो ले रहे हो, हम तो उनका नाम भी नहीं जानते, हम तो केवल कन्हैया को जानते और किसी को जानते ही नहीं। हम लोग अभी भी, मौका मिलेगा ना, बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ को देख थोड़ा रहा है, चलो इनसे भी कर लेते हैं, इनके भी दर मांग लेते हैं कुछ करके। व्रती तो रखना है, किसी को पता थोड़ा लगेगा मैंने 16 सोमवार रख लिए, फास्ट तो मैं घर में बैठ के कर रहा हूँ, किसी को क्या पता मैं फास्ट कर रहा हूँ, कर रहा हूं क्या? नोबडी नोस, कर दिए चुपचाप, बिना बताए कर दिए। कहीं ना कहीं कामना, कहीं ना कहीं डिजायर, कहीं ना कहीं सुख संपत्ति कष्ट से, मतलब जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे दूर होने के लिए हम लोग कई बार विचलित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं जिस प्रकार से कोई मेरा भजन करता है, ये था मां प्रदंते, जिस तरह कोई मेरा भजन करता है मैं उसी के अनुरूप उसको फल देता हूं। आरती है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसको फल देता हूं। बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? एक सिंपल सी बात है कि आप बाजार में गए, आपने कहा जी 1 तोला संखियां देना जरा, दुकानदार ने पैसे लिए, आपको संखियां दे दिया। पिता के पास गए, पिताजी 50 रुपये चाहिए। बोले किस लिए? संखिया खरीदना। तो दो झापड़ देंगे वो, सॉरी यू कैन नॉट गेट 50 रुपीज, 50 रुपये नहीं मिल सकते तुमको, घर बैठो आराम के साथ। क्योंकि पिता जो है आपका भला बुरा समझता है, आपके लिए क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है उसको समझता है। योग क्षेमम वहामी अहम, कि आपका योग और क्षेम को वहन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और देवता जो हैं, आप जो मांगोगे, जब आपने देवताओं की भक्ति जो है बिल्कुल सिस्टम से कर ली है, जो सिस्टम उनके लिए रिकमेंडेड है, तो वो आपको वर देने के लिए बाध्य है। जो आप मांगोगे आपको देंगे, यू आर एंटाइटल्ड फॉर इट। वो आपके आपको वर देने से मना नहीं कर सकते। समस्या आती है, राजा द्रुपद ने शिव जी की आराधना करी थी, उनसे मांगा था, परंतु शिव जी ने मांगने से पहले कह दिया तुम्हें पुत्री प्राप्त हो, तो लड़ पड़े थे उनसे। आप मेरे सामने प्रकट हुए हो तो आप मुझसे पूछो वर क्या मांगना चाहिए, आप अपने आप कैसे दे सकते हो, मुझे तो पुत्र चाहिए, आप अपने आप कैसे दे दोगे? तो शिव जी फंस गए, कहने लगे अच्छा भाई ऐसा है, लड़की आगे चल के लड़का बन जाएगी, तो शिखंडनी शिखंडी बना। देवताओं की भक्ति करने पे आपको जो वर है आपकी डिजायर के अनुसार मिलता है, परंतु भगवान की भक्ति करने के बाद आपको फल जो है भगवान की डिजायर के अनुसार मिलता है। वट्स एवर ही फील्स फिट फॉर यू। समस्त कामनाओं की पूर्ति का मतलब है अगर वो कामना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ठीक है तो आपको उसका फल मिलेगा, नहीं है तो डाला भी जा सकता। तो यहां उदारा शब्द जो हो रहा है उसका क्या है कि भक्त ने अपने आप को भगवान से जोड़ा है। आप तो मुझे नहीं चाहते फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूं, आपकी केयर करता हूं, आपका ध्यान रखता हूं, आपके प्रति समर्पित हूं। तो दिस मीन्स कि मैं उदार हूं, मतलब मैं संकीर्ण माइंड वाला नहीं हूं कि द्वेष करते हैं तो मैं भी इनसे द्वेष करूं, ईर्ष्या करते हैं तो मैं भी इनसे ईर्ष्या करूं। तो यहां पर जो है कि संबंध जो है भक्त भगवान से जोड़ रहा है, भगवान के प्रति समर्पण कर देता है। उसे कुछ नहीं पता उसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भौतिक कामना है ही नहीं, भौतिक डिजायर है ही नहीं। पर अगर भौतिक कामना वाला भी, जैसे यहां लिख रहे हैं कि सब प्रकार की भौतिक इच्छा वाला, अगर वो उदार बुद्धि वाला व्यक्ति चाहे सकाम हो निष्काम हो या मुक्ति का इच्छुक हो, वो अपने आप को भगवान से जोड़ देता है, परवाह नहीं करता किसी और चीज की, तो इसलिए वो उदार है। दूसरा मैंने बताया देवता की भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होता है, अच्छा हो या बुरा जो मांगोगे वो मिलेगा, परंतु भगवान की भक्ति करने में तो भगवान अपनी मर्जी से फल देते हैं, आपको अपना डिजायर्ड फल हो सकता ना मिले। आप जो है भौतिक संसार में कुछ एंजॉयमेंट के इच्छुक हैं, आपको नहीं मिलता है, पर फिर भी जो है भक्त जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, सकाम भक्त होने के बावजूद भगवान की सेवा में लगा रहता है। भगवान भक्ति बढ़ने का फल देते हैं, दूसरा नहीं देते। अर्थात जहाँ संसार में फंसावट होगी, जहाँ संसार में फंसने का चांस होगा, वहाँ भगवान जो है टाल जाएंगे, आपको नहीं देंगे। भक्त फिर भी उनका भजन करता है, कोई बात नहीं। कष्ट आ रहे हैं ना, मेरा टेस्ट है। तकलीफें हो रही हैं ना, मेरा एग्जाम है। ये कष्ट जो है मेरे को भोगने पड़ेंगे क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे कई सारे एग्जाम पास करने हैं, कई सारे टेस्ट पास करने हैं। भक्त जो है भौतिक संसार के सारे सुख भोग छोड़कर, रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भक्ति में लग जाता। भक्त की क्वालिटी है। सांसारिक भोगों को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है प्रभु जी, इट्स नॉट इजी जॉब। बस में बैठ के आना पड़े ना, कहाँ से आ रहे हैं जी, पीतमपुरा से, दो बसें बदली हैं तब यहाँ पहुँचे हैं, बाद में पैदल चले हैं रिंग रोड से लेके यहाँ तक। यार कार हो ना, घर से बैठे घर उतरे, कितना आसान काम है। भौतिक संसार के सुख भोगों को, जो उपलब्धियां हैं उनको छोड़ पाना बड़ा कठिन है। तो भक्त जब छोड़ देता है, चिंता नहीं करता है, रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, सबका लोभ लालच छोड़ देता है, इसका मतलब है वो बड़ा उदार है, इज अ क्वालिटी है उसकी। और लास्ट ऑफ ऑल कि मुक्ति का भी विचार नहीं करता, अर्थात परलौकिक जो है दूसरे लोक के लिए जो कामना की जाती है उसका भी विचार नहीं करता, उसका भी भाव नहीं रखता, केवल एक अनन्य भाव रखता है कि मैं भगवान की सेवा किस प्रकार से कर सकूं। बस डिजायर एक ही कि मेरे को अपने सुख की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। परंतु यहां जो है लास्ट वर्ड जो आ रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा दोहराऊंगा, किंतु भगवान अपने भक्त को अक्षय ऐश्वर्य प्रदान करके उसकी कामना पूरी करते हैं। व्हाट इज दैट अक्षय ऐश्वर्य? अक्षय मतलब न समाप्त होने वाला, जो समाप्त नहीं होता। ऐश्वर्य क्या है? व्हाट इज ऑपुलेंस? आपके पास ऑपुलेंस है। और यहां लिख रहे हैं कर्मी का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है किंतु भक्त का ऐश्वर्य अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होता, अविनाशी। जो जो भक्त अधिक भक्ति करता है त्यों तो उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। प्रभु जी ने भक्ति ज्यादा करी तो मतलब बिल्डिंगें बनती गई, मकान बनते गए, गाड़ियां आती गई, फार्म हाउस आते गए, बेंगलोर आते गए, 27 मंजिल का एंटीला बन गया। इज इट ऐश्वर्य? और वट इज दैट ऐश्वर्य? वो ऐश्वर्य क्या है? वो ऐश्वर्य जिसका कभी विनाश नहीं होता। वट इज दैट ऐश्वर्य? भक्त का ऐश्वर्य क्या है? This is very important. भक्त के लिए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? सुख पूर्वक स्थिति। ऐश्वर्य का मतलब क्या है? भौतिक संसार के अंदर इज वेरी ऑपुलेंट। एक मेंटल टेंशन छोड़ दें, अगर ये छोड़ दें, पारिवारिक झगड़े छोड़ दें, बैंक की कोर्ट की लड़ाइयां छोड़ दें, अदरवाइज जब ऐश्वर्य आता है तो व्यक्ति फील करता है आई एम वेरी वेरी ऑपुलेंट, मीन्स आई एम इन ए वेरी फेवरेबल सिचुएशन और मैं बड़ी सुखपूर्वक स्थिति में हूँ, आई एम वेरी हैप्पीली प्लेस्ड, मेरे पास हर प्रकार का ऐश्वर्य है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बैंगलोज हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, मेरे पास पूर्ण ऐश्वर्य है, अर्थात मैं एक बड़ी सुखपूर्ण स्थिति में रह रहा हूं। और भक्त का ऐश्वर्य क्या है? व्हाट इज दैट ऐश्वर्य? एक शब्द प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है, एक लाइन लिखी है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कर्मी का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति यहां से जाता है तो ना फार्म हाउस ले जाता है, ना बैंगलोर ले जाता है, ना कारें ले जाता है, ना बैंक बैलेंस ले जाता है, परंतु भक्त क्या लेके जाता है? भक्त का ऐश्वर्य क्या है? ज्यो ज्यो आप भक्ति करते हैं त्यों त्यों आपका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। व्हाट इज दैट ऐश्वर्य? कृष्ण प्रेम। उससे बड़ा ऐश्वर्य कोई नहीं है कि भगवान का प्रेम आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे वैसे वैसे भगवान का प्रेम बढ़ता जाएगा, आपका समर्पण बढ़ता जाएगा, भगवान का प्रेम बढ़ता जाएगा। और वो प्रेम अगर मान लीजिए किसी वजह से आप असफल योगी हो गए, मतलब आप जो है भगवान की सेवा करने में सक्सेसफुल नहीं रहे, कहीं ना किसी वजह से अगर आप विचलित हो गए हैं, तब भी जो है आपका ऐश्वर्य समाप्त नहीं होता, अब ईश्वर कभी खत्म नहीं होता। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भक्ति में किया गया प्रयास कभी भी उसका हास नहीं होता, कभी विनष्ट नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ कहते हैं असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद तो या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद भी असफल रहे तो वह ऐसे योगियों कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। आपका जो ऐश्वर्य है कृष्ण प्रेम, उससे बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं है। ऑपुलेंस। मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास एक बड़ा छोटा सा एक कमरे का फ्लैट है, परंतु प्राइम मिनिस्टर से मेरा प्रेम है। पुकारता हूं ना तुरंत चले आते। भगवान कहते हैं ना, तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगी ना, कि तुम्हारा मेरे से इतना प्रेम हो जाए कि तुम पुकारो और मैं चला आऊं। इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या हो सकता है? मकान नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, एक छोटे से मकान में रहता हूं, पर प्राइम मिनिस्टर से मेरा बड़ा प्रेम है, मैं पुकारता हूं तो वो चले आते। इससे बड़ा ऐश्वर्य और क्या हो सकता है? भौतिक संसार की बात कर, जब आध्यात्मिक संसार की बात करते हैं, भगवान की भक्ति की बात करते हैं, तो मैं भगवान की भक्ति में इतना रत हूं, इतनी मेरी डीप इन्वॉल्वमेंट है, भगवान के प्रति मेरा इतना समर्पण है, ईगो नहीं है समर्पण का, गंध मात्र भी उसका नहीं है कि मैं बड़ा भक्त हूं, नो, बट ऑटोमेटिकली इट इज सच कि भगवान जो है मेरी पुकार सुनते और चले आते हैं। ये ऐश्वर्य कभी न समाप्त होने वाला है, कैरी फॉरवर्ड होता है। अगले जन्म में अगर मान लो असफल हो भी गए इस जन्म के अंदर, तो जहां से भक्ति छोड़ी थी वहीं से भक्ति दोबारा मिल जाती है, यू कैरी फॉरवर्ड। इसलिए कहा अविनाश्वर, उसका विनाश नहीं होता, अविनाशी है। तो भक्त का ऐश्वर्य है वो, फिर उस ऐश्वर्य के अंदर बहुत सारे गुण आते हैं। मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज है जी, जो एक भौतिक संसार के व्यक्ति के पास नहीं है। क्या है? मैं परा दुखा दुखी हूं, दूसरों के दुख में मैं दुखी हूं। किस दुख में? कि ये व्यक्ति भौतिक संसार के अंदर 84 लाख योनियों में भटकेगा, इसको बाहर निकालना है, मेरा दिल दुखता है, इसको भक्ति में लगाया जाए, इसको किसी तरीके से खींच के मंदिर लाया जाए, भक्तों का संग कराया जाए, भगवान के दर्शन कराए जाएं, कथा सुनाई जाए, कृष्ण प्रसाद खिलाया जाए। ये जो परा दुखी दुखी होना हमें लगता है कि बड़ी साधारण चीज है, परंतु मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरी ऑपुलेंस है। ध्यान से सोचिएगा कभी, आई फील कि ये मेरा एक ऐश्वर्य है जो मेरा कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। क्योंकि जब मैं असफल रह गया, गलती से मैं भगवान के धाम नहीं जा सका, तो मेरे को अगले जन्म के अंदर फिर एक ऐसा ही जगह मिलेगी, ऐसा ही लोक मिलेगा, ऐसा ही स्थान मिलेगा, जहां से मैं भक्ति फिर से आरंभ कर दूंगा और मेरा ऐश्वर्य कैरी फॉरवर्ड होगा बचपन से ही। वाई पीपल एट 15 ईयर्स ऑफ एज बिकम डिवोटीज? छोटे छोटे बच्चे हैं 20 साल 22 साल 24 साल की उम्र में भक्त बने हुए हैं, भगवे कपड़े पहने हुए हैं। जब लोग जो है 24 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में डिस्को में नाचते हैं, देयर अट्रैक्शन इज डिस्को। चलो भाई डिस्को में चलो, चलो आज शाम फलाना सिंगर आ रहा है, शाम ये हो रहा है, शाम ये हो रहा है, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन भौतिक सुख ऐश्वर्य, और वह यहां सब कुछ छोड़ के जो है भगवे कपड़े पहने हुए। किस लिए? अपने कल्याण के लिए नंबर वन, और दूसरों के कल्याण के नंबर टू। तो दूसरों के कल्याण करने का जो एक सुखपूर्वक स्थिति है, जो एक आनंदमय स्थिति है, वो मेरा इनका ऐश्वर्य है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। दैट विल कैरी कैरी एंड कैरी, वो कभी समाप्त ना होने वाला है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जो भक्त अधिक भक्ति करता है त्यों त्यों उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है, क्योंकि जब भक्ति अधिक करेगा तो भगवान के हृदय में उसको जो है स्थान प्राप्त हो जाएगा, जो अदरवाइज नहीं होने वाला है। तो भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेना, कि भगवान आपके हृदय में हो और आप भगवान के हृदय में हो, इससे बड़ा ऐश्वर्य और कोई नहीं हो सकता। इसलिए जो है यहाँ कह रहा है कि भगवान कृष्ण उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं, एंड कामना हैज टू बी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की। कामना जो है अगर भौतिक संसार भोगने की है तो जितना आपके कर्म के फलों के अनुसार आवश्यक है उतना तो आपको अवश्य ही मिलेगा, वो तो आपको कर्म के फल है, आपको वो आपको मिलना है, प्रारब्ध है वो आपको मिलना है। परंतु भक्त जो है जब भगवान से प्रार्थना करता है तो उसके मन में सिर्फ एक बात होती है, भक्त के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। वो प्रणाम करता है, दंडवत करता है, भगवान से प्रार्थना करता है तो हर वक्त यही कहता है, मुझे अपनी सेवा में लगाएं। माला जब करता है तो मुझे अपनी सेवा में लगाएं। कल मेरे पास एक मेल आया रात में, एक हमारा इस्कॉन टेम्पल है फ्लोरिडा में, उसके प्रेसिडेंट का मैसेज था कि मेरी डॉटर की दीक्षा हुई है कल, और आप जो है सब भक्तों से प्रार्थना है कि उसे ब्लेस करें कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। एक दिन पहले, मतलब आज शायद होली वाले दिन हुआ है, होली से एक दिन पहले हुआ है, जयपता का महाराज ने 300 भक्तों को दीक्षा दिया, एंड शी इज वन ऑफ देम। तो क्या प्रार्थना करी? भक्त जो है भक्त के पास जाएगा, प्रणाम करेगा, बोला प्रभु जी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्या है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। ये नहीं कहेगा प्रभु जी आप तो बड़े एडवांस्ड भक्त हो, आप तो बड़े जो है भगवान के निकट हो, तो प्रार्थना करिए कि मेरा एक मकान बन जाए। एक रिक्वेस्ट लगाइए ना मेरी तरफ से, मेरी नहीं सुनेंगे पर आप तो एडवांस्ड हो ना, आपकी तो सुन ही लेंगे। तो भक्त जो है सीनियर भक्त से कह रहा है कि एक मकान दिलवाओ, चलो भगवान से प्रार्थना करो। तो भक्त आके क्या कहेगा? प्रभु जी ब्लेस मी, मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ूं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूं, भगवान के प्रति मेरा समर्पण और ज्यादा हो, इसके लिए मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सो दिस इज द स्टोरी, कि हमें जो है ये बात समझनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य की प्राप्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज द सिस्टम। हरे कृष्ण। शिल्पोपाद की